हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, जेकेपी पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है भारतीय समाजशास्त्र में प्रयुक्त परिपेक्ष, पर्सपेक्टिव्स यूज्ड इन इंडियन सोशियोलॉजी। ये सच है कि भारत में एक सब्जेक्ट के रूप में समाजशास्त्र का आगमन वेस्ट से हुआ है। यही कारण है कि भारत में समाजशास्त्र की सामग्री, अध्ययन पद्धतियां एवं परिपेक्ष पर वेस्ट की छाप है। साथ ही भारतीय समाज के स्वतंत्रता से पहले जितने भी अध्ययन हुए हैं, उन सभी समाजशास्त्रीय अध्ययनों को ब्रिटिश विद्वानों द्वारा किया गया। इनमें से अधिकतर का उद्देश्य भारत में उपनिवेशवादी शासन को बनाए रखने के लिए सैद्धांतिक आधार तलाश करना था। इसीलिए उन्होंने या तो भारतीय समाज की वास्तविकता पर ध्यान नहीं दिया, अगर दिया तो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ऐसे में इंडिपेंडेंट इंडिया में भारतीय समाजशास्त्रियों के सामने ये सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि कैसे भारतीय समाज का वास्तविक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाए। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये बात सामने आई कि भारतीय समाज का अध्ययन पश्चिमी परिपेक्षों के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए नए परिपेक्षों का बनाना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। भारतीय विद्वानों ने इस बौद्धिक चुनौती का सामना किया और आज हमारे पास भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए अनेक परिपेक्ष हैं। भारतीय समाज के वैज्ञानिक अध्ययनों में उपयोगी एवं स्वतंत्रता के बाद अधिकांश भारतीय समाज वैज्ञानिकों द्वारा अपनाए गए चार प्रमुख परिपेक्ष का जो विवरण है वो प्रोफेसर इम्तियाज अहमद ने इंडियन जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च के अपने एक लेख में दिया है। वो चार जो पर्सपेक्टिव्स है वो है भारतीय विद्या शास्त्रीय, सेकंड दर्शन शास्त्रीय, थर्ड इज अनुभाविक और फोर्थ है सामाजिक मानव शास्त्रीय। जो चारों परिपेक्ष है इनमें से जो पहले दो है भारतीय विद्या शास्त्रीय एवं दर्शन शास्त्रीय परिपेक्ष का जो सर्जन हुआ वो विशेष रूप से भारतीय समाज के परंपरागत स्वरूप को समझने के लिए किया गया था, जबकि बाद के जो दो परिपेक्ष है अनुभाविक और सामाजिक मानव शास्त्रीय, इन परिपेक्षों का प्रयोग पश्चिमी समाजशास्त्र में भी होता रहा है। प्रोफेसर अहमद के अनुसार चारों परिपेक्षों के अतिरिक्त भी भारतीय समाज वैज्ञानिकों ने अन्य परिपेक्षों को भारतीय समाज का विश्लेषण करने के लिए अपनाया है। इनमें से प्रमुख है दलितोद्धार परिपेक्ष, मिश्रित परिपेक्ष, सभ्यता परिपेक्ष, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिपेक्ष, संघर्ष परिपेक्ष, ऐतिहासिक उद्विकासीय परिपेक्ष, तुलनात्मक परिपेक्ष और अंतर्वैश्विक परिपेक्ष। सबसे पहले हम जिस परिपेक्ष की बात करेंगे वो है भारतीय विद्या शास्त्रीय परिपेक्ष। यह परिपेक्ष एक विशुद्ध भारतीय परिवेश में बना परिपेक्ष है, जिसका प्रयोग ज्यादातर भारतीय समाज के परंपरागत स्वरूप को जानने के लिए किया गया है। इसके समर्थक भारतीय समाज को प्राचीन भारतीय ग्रंथों एवं ऐतिहासिक प्रलेखों तथा पांडुलिपियों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। जीएस घुरिए एवं लुइस ड्योमो का विशेष योगदान है इस परिपेक्ष को आगे बढ़ाने में। इरावती कर्वे की हिंदू समाज की विवेचना एवं के एम कपाड़िया का हिंदू नातेदारी का अध्ययन इसी परिपेक्ष पर आधारित है, जो इस परिपेक्ष का एक सही उदाहरण है। दूसरा जो परिपेक्ष है वो है दर्शन शास्त्रीय परिपेक्ष। ये परिपेक्ष भी भारतीय समाज शास्त्रियों के प्रयास का ही परिणाम है। ये परिपेक्ष भारतीय इतिहास व परंपरागत भारतीय चिंतन की को केंद्रीय महत्व प्रदान करता है। इस परिपेक्ष का उन्मुखीकरण दर्शन शास्त्रीय है, लेकिन फिर भी यह भारतीय समाज की वस्तुनिष्ठ विवेचना करने में सफल है। इसका जो निर्माण किया है उसमें डीपी मुखर्जी का विशेष योगदान रहा है। इसके निर्माण में बाद में उनके अनेक जो उनके अनुयायी थे उन्होंने इस परिपेक्ष का प्रयोग भी भारतीय समाज को समझने में किया है। इस परिपेक्ष के जितने भी समर्थक थे उन्होंने भारतीय समाज एवं पश्चिमी समाज के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय समाज नैतिक आदर्शों, दर्शन एवं धार्मिक नियमों के संबंध में उनसे आगे है। तीसरा जो परिपेक्ष है वो है आनुभाविक परिपेक्ष। यह परिपेक्ष मूल रूप से अमेरिकी समाजशास्त्र की देन है, इसीलिए पहले भारतीय समाजशास्त्रियों ने इसे अपने अध्ययनों का माध्यम बनाया जो किसी न किसी रूप में अमेरिकी समाजशास्त्र से प्रभावित थे, किंतु बाद में इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे लार्ज स्केल पर अपनाया जाने लगा। यह परिपेक्ष सेकेंडरी डाटा के स्थान पर प्राइमरी डाटा के प्रयोग पर ज्यादा बल देता है और इसके लिए सामाजिक सर्वे पद्धति का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है। वाई बी दामले आदि ने इसका समर्थन किया और ज्यादातर अगर हम देखते हैं विश्वविद्यालय स्तर पर अगर हम कोई अध्ययन देखते हैं तो विश्वविद्यालय स्तर के अध्ययन इसी के आधार पर किए जा रहे हैं। फोर्थ जो परिपेक्ष है वो है सामाजिक मानव शास्त्रीय परिपेक्ष। इंडिपेंडेंट होने से पहले भारत में मानव शास्त्र का आगमन समाज शास्त्र से भी पहले हुआ था। इसका कारण था कि ब्रिटिश भारतीयों को पिछड़ा हुआ मानकर भारतीय समाज को आदिम समाज के रूप में देखते थे। इसका एग्जाम्पल है कि जर्मन के संस्कृत भाषा जानकार मैक्स मूलर द्वारा भारतीय वेदों की व्याख्या भारतीयों को पिछड़ा मानकर ही किया जाना है। बाद में दयानंद सरस्वती जैसे भारतीय विद्वानों ने सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों में इसकी व्याख्या की है। ये परिपेक्ष भी क्षेत्र अध्ययनों पर ही बल देता है। के एस माथुर, टी एन मदन आदि इस परिपेक्ष के समर्थक रहे हैं। आज यह परिपेक्ष समाज शास्त्र में मात्र आदिवासी अध्ययनों तक ही सीमित रह गया है। फिफ्थ परिपेक्ष जो है वो है दलितोद्धार परिपेक्ष। यह परिपेक्ष भी भारतीय समाज की विशेषताओं को समझने के लिए विशेष रूप से विशुद्ध भारतीय परिपेक्ष है। इसका निर्माण समाज के दलित, शोषित एवं वंचित वर्ग के अध्ययन के लिए किया गया है। इस परिपेक्ष के माध्यम से न केवल उन सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग की समस्याओं को उजागर किया गया है बल्कि उनके उत्थान के लिए सुझाव भी देने का प्रयास इस परिपेक्ष के द्वारा किया गया है। इस परिपेक्ष का प्रयोग भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एवं डेविड हार्डीमैन ने अपने अध्ययनों में मुख्य रूप से किया है। सिक्स्थ परिपेक्ष जो है वो है मिश्रित परिपेक्ष। इस परस्पेक्टिव का निर्माण भारतीय एवं पश्चिम परिपेक्ष की विशेषताओं को मिलाकर अध्ययन को अधिक वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय बनाने के लिए किया गया है। यह परिपेक्ष बहुत ही ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है, किंतु इसकी इसका कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें अनेक भारतीय परिपेक्षों एवं अनेक पश्चिम परिपेक्षों की विशेषताओं को विभिन्न अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसको बताया है, जिससे इसके इस स्वरूप को लेकर एक अनिश्चितता बनी हुई है। यहाँ तक कि इसका नामकरण भी अभी तक विधिवत नामकरण भी अभी तक इसका नहीं हुआ है। इस अधिक ज्यादातर अगर हम देखते हैं तो जो भारत विद्या शास्त्रीय परिपेक्ष एवं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिपेक्ष की जो खूबियां है, जो उसकी विशेषताएं है, उसका इसमें समायोजन है। इस प्रकार इसके अंतर्गत प्राचीन ग्रंथों एवं यथार्थता में एक समन्वय बनाए रखने का प्रयास इस परिपेक्ष के द्वारा किया जाता रहा है। इरावती कर्वे एवं ए एम साहब ने इस परिपेक्ष का प्रयोग अपने अध्ययनों में किया है। सेवेंथ परिपेक्ष जो है वो है सभ्यता परिपेक्ष। इस परिपेक्ष के माध्यम से भारत एवं भारत जैसे समाजों का विश्लेषण किया जा सकता है। सभ्यता जो कि संस्कृति का, जैसे कि हम सबको पता है कि सभ्यता संस्कृति का भौतिक पक्ष है, और संस्कृति को हम समाज का दर्पण कहते हैं। सभ्यता में मूर्तता के गुण होने के कारण इसके आधार पर वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना संभव है। इसी प्रकार सभ्यता अध्ययन के लिए ठोस मापदंड प्रस्तुत करती है भारतीय सामाजिक विद्वानों में एन के बोस एवं सुरजीत सिन्हा ने इसी परिपेक्ष को अपने अध्ययनों में अपनाया है। एट्थ जो परिपेक्ष है वो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिपेक्ष। ये परिपेक्ष सामाजिक संरचना एवं उसके सामाजिक प्रकारियों की अवधारणा पर आधारित है। इसमें अध्ययन की इकाइयां, जितनी भी इकाइयां होती है, अध्ययन की सभी इकाइयों एवं उनके मध्य पारस्परिक संबंधों की तथा प्रत्येक इकाई के की सभी की व्यवस्था को दिए जाने वाले योगदान का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। ये परिपेक्ष वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है तथा क्षेत्र आधारित अध्ययनों पर ही बल देता है। भारत में एमएन श्रीनिवास और एससी दुबे आदि समाज वैज्ञानिकों ने इसी अध्ययन को, इसी परिपेक्ष को अपनाया है। नाइन्थ जो परिपेक्ष है नेक्स्ट वो है संघर्ष परिपेक्ष। संघर्ष परिपेक्ष क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है, इसी कारण इस परिपेक्ष को हम मार्क्सवादी परिपेक्ष भी कह सकते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिपेक्ष के बिल्कुल विपरीत इसकी मान्यता है कि आधुनिक समाज तनाव व संघर्ष से ग्रसित है। सामाजिक जीवन में सामान्य सहमति ना होकर असहमति, प्रतिस्पर्धा, तथा स्वार्थों में संघर्ष की ज्यादा प्रधानता है। इस प्रकार यह समाज में पाए जाने वाले तनाव एवं संघर्ष का विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर हम भारतीय परिवेश की बात करें तो भारतीय परिवेश में डीपी मुखर्जी, आर के मुखर्जी और ए आर देसाई आदि विद्वान इसी परिपेक्ष को अपनाने वाले विद्वान हैं। नेक्स्ट जो परिपेक्ष है वो है ऐतिहासिक उद्विकासवादी परिपेक्ष। आजादी से पहले भारत में ज्यादातर समाजशास्त्रीय अध्ययन इसी अध्ययन के आधार पर किए जाते थे, जो भारतीय समाज को एक ऐसी ऐतिहासिक निरंतरता के रूप में देखते थे जिस पर बाहर का जो प्रभाव है वो कम से कम पड़ा हो। इस परिपेक्ष के अंदर भारतीय समाज का प्रस्तुतीकरण हम दो प्रकार से किया जाता था। पहला, आदिम साम्यवादी के इतिहास को जानने के लिए, जैसे हेनरी मैन ने इस प्रकार का अध्ययन किया। दूसरा, भारतीय गांवों को लघु गणतंत्र के रूप में देखने एवं उसके लक्षणों को जानने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स मेटकॉक का जो अध्ययन है वो इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट जो परिपेक्ष है वो है तुलनात्मक परिपेक्ष। इस परिपेक्ष का प्रयोग सभी प्रकार के समाजों के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत एक ही समय में अथवा विभिन्न कालों में दो या दो से अधिक सामाजिक पहलुओं की तुलना कर अध्ययनरत विषयों में समानता एवं असमानता को जानने का प्रयास किया जाता है। इस परिपेक्ष के माध्यम से ऑस्कर लेविस ने मेक्सिको के गांव टोपोजलन की तुलना भारत के गांव रानीखेड़ा से की है। इसी प्रकार जीएस घुरिये ने बिहार के तालुका गांवों का अध्ययन प्रस्तुत किया, जबकि के एल शर्मा ने राजस्थान के एवं आर के मुखर्जी ने बंगाल के गांव का तुलनात्मक अध्ययन किया। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारा परिपेक्ष है वो है अंतर वैश्विक परिपेक्ष, इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। ये परिपेक्ष एक नया परिपेक्ष है जिसको एक सामाजिक इकाई अथवा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा एक साथ अपने अपने विषयों के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। एससी दुबे ने सामुदायिक विकास योजना के प्रभावों को जानने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों की एक टीम बनाकर इसी परिपेक्ष का अध्ययन किया और इसके परिणामों को अपनी पुस्तक इंडियाज चेंजिंग विलेज में प्रस्तुत किया। जितने भी अभी आपको परिपेक्ष बताए हैं वे सभी परिपेक्ष स्वतंत्र रूप से विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए विकसित हुए हैं, किंतु अपने आप में वो सभी पूरे नहीं है। अर्थात अगर हम ये बात करें कि एक परिपेक्ष अनेक बिंदुओं पर दूसरे को बढ़ावा देता है, भारतीय परिपेक्ष में जितने भी परिपेक्ष बने हैं वे सब द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करते हैं, जबकि पश्चिमी परिपेक्ष प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करते हैं। यद्यपि आधुनिक भारतीय समाजशास्त्र में दोनों प्रकार के परिपेक्षों के माध्यम से अध्ययन किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पश्चिमी परिपेक्ष को भारतीय परिस्थिति के अनुकूल रूपांतरित करके यानी भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें बदलकर अधिकांश अध्ययन हो रहे हैं। धन्यवाद। ये जो बताया है बच्चों टॉपिक, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको इसके नोट्स बनाने हैं और फिर बताना है कि जो चीज आपको समझ में नहीं आई है तो मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर इसके नोट्स आप सेंड कर सकते हैं।